अब अरमान ने अपना जिम कंप्लीट करने के बाद नहाने के लिए कमरे में आया। उसने आस्था को इस तरह देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो मन ही मन में सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। आस्था की कमर हल्की हल्की भीगी हुई थी। पानी की बूंदें उसकी कमर पर इस तरह दिखाई दे रही थी मानो हरी घास पर सुबह सुबह पड़ती हुई ओस की बूंदें। उस वक्त आस्था बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, यूं कहा जाए तो एकदम कयामत ढा रही थी। अरमान खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से आस्था के पास चला गया। घुटनों के बल बैठकर उसने आस्था की खूबसूरत नाभि को चूम लिया। आस्था ने उस वक्त अपनी मांग में बड़ा सा सिंदूर लगा रखा था और गले में अपनी फेवरेट लॉकेट पहनी हुई थी। वो खिली खिली बड़ी ही प्यारी लग रही थी। जैसे ही उसने हल्का सा झुककर अरमान को इस तरह अपने पास घुटनों के बल बैठे हुए देखा और उसे चूमते हुए देखा तो वो शर्म के मारे खिलकर और भी ज्यादा गुलाब हो गई। आस्था भी तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और उसने अरमान को अपने सीने से लगा लिया। क्यूट सी आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे सामने झुके, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा बोलकर आस्था ने अरमान के माथे को चूम लिया। अरमान तुरंत उसके साथ खड़ा हुआ और मदहोशी भरी आवाज में बोला, आफत एक आप ही हैं जिसके सामने अरमान सिंघानिया झुक सकता है, वरना और किसी की इतनी हिम्मत और औकात नहीं है। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था के माथे को चूम लिया और बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर अरमान जल्दी ही वॉशरूम में चला गया। आस्था अरमान की बातों पर गौर करती रही। आज के अरमान में और पहले के अरमान में कितना फर्क था, आस्था यही सोच सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। फिलहाल आस्था जल्दी ही नीचे आ गई। नीचे आकर उसने देखा कि मारिया और रश्मि पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। नानी माँ ने उन तीनों के लिए पूजा की थाली तैयार कर दी थी। बोली, जब तक वो लोग नाश्ता या ब्रेकफास्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वो कान्हा जी की पूजा नहीं करेंगे। अब नानी माँ ने बोला तो सभी अब बेसब्री से अपने अपने पार्टनर के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि लड़कियां तो ऑलरेडी तैयार होकर आ गई थीं, लेकिन टाइगर, आकाश और साथ ही साथ अरमान अभी तक नीचे नहीं आए थे और वो तीनों सीढ़ियों की तरफ देखे जा रही थीं, वही जो कि तैयार होकर वहां मौजूद थीं। साथ साथ राधिका और रौनक, सुमित, वो सब भी ऑलरेडी तैयार थे। और नानी माँ ने बोला, सबके सब एक साथ कान्हा जी के मंदिर जाएंगे। वहीं दादाजी भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और कहीं ना कहीं नानी माँ के आ जाने पर उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि सारे सब एक फैमिली के जैसे लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई अलग है या पराया है, एक बड़ी ही प्यारी सी खूबसूरत सी फैमिली बन गई थी। और दादाजी शुरू से ऐसी ही फैमिली अरमान के लिए चाहते थे। वो जल्दी ही सबके सब पूरी तरह से मंदिर जाने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी ओर वीर ने अपनी माँ के साथ मिलकर प्लान बनाया था आस्था को अगवा करने का, लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो गया था क्योंकि अरमान ने उसका प्लान वक्त रहते भांप लिया था और उसके बदले में वसुंधरा, जो कि अपने बालों को नोचती हुई वहां से बाहर निकली थी और सीधा रायचंद हाउस में खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन अब वीर के पकड़े जाने पर वीर को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं अबीर सिंह राठौड़ उसकी जान ना ले ले। अबीर सिंह राठौड़ ने वीर को अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं वीर को अबीर पर उस वक्त बेहद गुस्सा था क्योंकि अबीर ने उसकी लड़कियों के सामने काफी बेइज्जती की थी, तो इसीलिए वो सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। लेकिन अभी फिलहाल उसके लिए अपनी जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसीलिए उसने अबीर को फुसलाते हुए कहा, तुमने मेरे पिता से वादा किया है कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, तो तुम मुझे इस तरह से अगवा नहीं कर सकते हो। इसीलिए वीर अबीर के किए हुए वादे को याद दिलाया जो अबीर ने उसके पिता से किया था। अबीर जोरों से हंसने लगा और डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें ये वादा तो याद है, लेकिन उस वादे का क्या जो मैंने वादा खुद से किया है, अपनी बटरफ्लाई की रक्षा करने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में सोचने की, और साथ ही साथ उसे अगवा करने के बारे में तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि अबीर सिंह राठौर के रहते तुम मेरी बटरफ्लाई को अगवा कर लोगे? ये तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है वीर रायचंद। इसके लिए अबीर सिंह राठौर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और इससे पहले कि वो अरमान सिंघानिया तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करें, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते हुए अबीर बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। वहीं वीर के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। वो समझ चुका था कि शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। अभी के लिए अबीर ने वीर को अजीत के द्वारा अपने कमरे में एक कमरे में अच्छी तरह से उसके हाथ पैरों को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। वहीं दूसरी ओर अब रश्मि थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोली, नानी माँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये लड़के लोग कितना तैयार होंगे? अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं और कितना टाइम लगेगा? देखो हम सब कब से तैयार हैं। तब नानी माँ आहान की ओर हल्की मुस्कान से देखकर बोली, आहान बिठवा, जाकर अपने भाइयों को देखकर तो आ, ये तो दुल्हनों से भी ज्यादा समय लगा रहे हैं। देखो जाकर आखिरकार कब आएंगे, आखिरकार एक नॉर्मल धोती कुर्ता ही तो पहनना है, उन्हें पहनने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। जी हाँ, हमारी नानी माँ ने सबके कमरों में एक एक जोड़ी धोती कुर्ता रखवा दिया था और बिल्कुल पारंपरिक परिधानों में उन्होंने पूजा करवाने के लिए लेकर जाना चाहती थी। अब वो लड़के नहा धोकर तैयार तो हो गए थे, कुर्ता भी उन्होंने पहन लिया था, लेकिन अब मसला अटक गया था धोती का। अब वो धोती कैसे पहनेंगे? तब नानी माँ ने आहान से कहा, देख कर आओ क्या वो धोती पहन पा रहे हैं या नहीं पहन पा रहे। तब दादाजी हैरान हो गए थे, कुछ सोचते हुए बोले, क्या बहन जी, क्या आपने उन्हें पहनने के लिए धोती दी है क्या? तब नानी माँ ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तब दादाजी खोए हुए ही मुस्कुराकर बोले, अब मैं समझा कि उन्हें आने में इतना समय क्यों लग रहा है। आप एक काम कीजिए, अब थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर दादाजी अब सबसे पहले अरमान के पास गए, जिसने धोती को भी टॉवल की तरह पहन रहा था, कभी किसी तरह से पहन रहा था और कभी वो पहनकर एक कदम आगे चलता तो वो धोती फिसलकर नीचे गिर जाती और उसके अंडरवेयर तक दिखाई देने लगते। तो इसीलिए अब अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो धोती को पहने तो पहने कैसे। इसीलिए दादाजी वहां आ गए थे और उन्होंने अरमान को सीधा खड़ा होने के लिए कह दिया था और साथ ही साथ इस बात के बारे में कह दिया था कि वो अब भूल कर भी बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये कहते हुए दादाजी ने जल्दी ही अब उसे धोती पहनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद अरमान को नीचे भेजने के बाद वो सीधा आकाश के पास पहुंचते हैं और आकाश को भी उन्होंने अरमान के जैसे ही धोती पहनाना शुरू कर दिया था और आकाश भी अब तैयार था तो इसीलिए वो भी हॉल में चला गया था और फिर इसी तरह उन्होंने टाइगर को भी रेडी कर दिया। वेल, जल्दी ही सब तैयार होकर नीचे हॉल में आ गए थे। वहीं रश्मि, मारिया, साथ ही साथ आस्था, राधिका, रौनक जैसे ही उन सबको धोती में देख रही थी तो उनके चेहरे पर बार बार रह रहकर मुस्कुराहट आ रही थी, लेकिन सबके सब बड़े ही क्यूट लग रहे थे। वहीं आस्था तो अरमान को बार बार प्यार से घूर रही थी और अरमान अब आस्था के पास गया और धीरे से बोला, ये क्या मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, अगर आपको मैं इतना ही अच्छा लग रहा हूँ तो हम मंदिर जाने का प्लान कैंसिल कर सकते हैं और एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम बेडरूम में स्पेंड कर सकते हैं। अब जैसे अरमान ने आस्था को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए पाया और उसके बाद उसने आस्था से ये बोला, आस्था तुरंत शर्मा उठी थी और वो जल्दी से शर्माते हुए बोलती है,
अरे नहीं नहीं, आप कैसे बातें कर रहे हैं, पर कुछ भी कहो, आप मुझे आज बड़े ही क्यूट लग रहे हैं। ऐसा बोलकर आस्था हल्का सा अरमान के गाल को खींच लिया था। वहीं सब हैरानी से आस्था को देखने लगे थे। वहीं आहान और ध्रुव तो मन मन में बोले, वाकई उनकी भाभी एकदम शेरनी है शेरनी, वरना शेर के गाल को खींचने कोई आम बात नहीं है। जल्दी सभी के सभी अब एक साथ मंदिर की ओर रवाना हो चुके थे। रश्मि आज बेहद खुश थी, आकाश का हाथ थाम कर वो बैठी हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आकाश की ही ख्वाहिश की थी और आकाश उसे मिल चुका था, वो भी प्यार के साथ। तो आकाश और रश्मि की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। वहीं राधिका और रौनक इस वक्त नानी माँ के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, दादाजी ध्रुव आहान के साथ थे और बाकी कपल्स अलग अलग गाड़ियों में एक साथ थे। वेल, जल्दी ही वो लोग मंदिर में पहुंच चुके थे और चूंकि कान्हा जी का मंदिर, जो कि वहां का फेमस मंदिर था, वहां की सीढ़ियां देखकर अब रश्मि और साथ साथ मारिया, बाकी सबका जो वहां पहली बार आए थे, उनका सर चखाने लगा था और वो सोचने लगे कि इस मंदिर की सीढ़ियों को आखिरकार पार कैसे किया जाएगा। लेकिन तभी नानी माँ ने उन सब की ओर देखते हुए ऑर्डर दिया, अभी ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, अपनी अपनी बीवियों को उठाओ और मंदिर तक लेकर जाओ। तब टाइगर तुरंत आगे आया और फिक्र जताते हुए बोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है नानी माँ, ये मंदिर तो इनकी सीढ़ियों तो कितनी सारी, काफी ज्यादा हैं, इस तरह से तो मेरे किंग थक जाएंगे। टाइगर को अपना ख्याल नहीं आया, उसे किंग का ख्याल आया और टाइगर की बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। तब टाइगर थोड़ा सा झेप गया और तब नानी माँ टाइगर की ओर देखकर मुंह से कोड़ते हुए बोली, तुम्हारे किंग को तुम्हें नहीं उठाना है और वैसे भी तुम्हें तो बहुत शौक है ना लोगों को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाने का, तो अब अच्छा मौका मिला है, अपनी बीवी को उठाओ, इज्जत से लेकर जाओ। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, टाइगर छेप गया और अगले पल उसने मारिया को देखा। मारिया तो एकदम लंबी हाइट की, लंबी तगड़ी, बढ़िया पर्सनैलिटी की लड़की थी। टाइगर सोचने लगा कि भले ही ये देखने में कितनी ही कोमल और सॉफ्ट क्यों ना हो, लेकिन अंदर से कितनी ज्यादा हार्ड है ये तो अच्छी तरह से जानता है। लेकिन फिलहाल उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और जल्दी ही सभी ने अपने अपने पार्टनर्स को गोद में लिए उठा लिया था। वहीं अरमान ने तो आस्था को बड़े ही प्यार से होल्ड करके रखा हुआ था, शिद्दत से उसकी आंखों में देखते हुए वो जल्दी ही उसे लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। नानी माँ सबको जाता हुआ देखकर बेहद खुश थी और साथ ही साथ कान्हा जी का ढेर सारा धन्यवाद दे रही थी और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना करने लगी। जल्दी धीरे धीरे नानी माँ रौनक और राधिका की हेल्प से ऊपर चढ़ने लगी थी और दादाजी ध्रुव आहान की हेल्प से सीढ़ियों पर आराम आराम से थोड़ा रेस्ट करते करते चढ़ने लगे थे। वेल, अभी वो लोग अपनी पूजा कंप्लीट कर ही रहे थे कि तभी अचानक कम से कम 25 से 30 एकदम महंगी से महंगी ब्रांडेड गाड़ी आकर वहां रुकती है और उनमें से एक 25 से 26 साल का नौजवान बाहर निकलता है, जो दिखने में बड़ा ही स्मार्ट और डैशिंग था और उसके आसपास एकदम काले कपड़े पहने हुए उसके बॉडीगार्ड थे, जो एक से बढ़कर हट्टे कट्टे थे। तब मंदिर की ओर देखते हुए उस नौजवान ने अपने आंखों पर चढ़ाई हुई शेड्स को उतार दिए थे और मंदिर को अपनी उम्मीद भरी आंखों से देखने लगा था और मन ही मन में कहा, मैंने सुना है कि यहाँ मांगी हुई मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। मैं भी देखता हूँ कि मेरे 20 सालों की ख्वाहिश क्या यहाँ पूरी होगी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए जल्दी ही उसने अपने गार्ड्स की ओर देखा और उसके गार्ड्स फटाफट से सीढ़ियों पर आगे चढ़ने लगे थे। कुछ गार्ड्स उसके पीछे पीछे थे, कुछ उसके आगे आगे थे और उनके बीच में से चलते हुए जा रहा था वो 25 से 26 साल का नवयुवक। नौजवान वहीं जल्दी ही सीढ़ियां चढ़ने लगा था। वहीं दूसरी ओर वहीं सबके सब ऊपर मंदिर में पहुंचने के बाद अच्छे से सब सुस्ताने लगे थे। आस्था अरमान के हाथों पर अपने कोमल कोमल हाथों को फहराने लगी थी। अरमान को ये बहुत ही पसंद आ रहा था। हालांकि अरमान के हाथों में कोई खास दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी आस्था का इस तरह से इतने प्यार से उसे छूना उसे बड़ा भा रहा था और जानबूझकर अब तो आस्था के सामने अपने दोनों हाथों को आगे करके बैठ गया था और फुसलाते हुए बोला, यहाँ भी दर्द हो रहा है आस्था, यहाँ भी कीजिए ना प्लीज। अब आस्था अरमान की शरारत देख रही थी, क्योंकि अरमान जिस तरह से उसे देख रहा था, आस्था के गाल एकदम ही लाल होने लगे थे। वेल, जल्दी ही नानी माँ ने सबको एक एक पूजा की थाली देते हुए कहा कि वो सब अपनी अपनी पूजा कंप्लीट करें। पूजा की थालियां ऑलरेडी वो घर से ही लेकर आई थी, जो नानी माँ ने बड़े ही प्यार से आरती की थाली उन सब नवविवाहिता के हाथों में दे दी थी और सब बड़े ही मन से अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए साथ ही साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगी थी और सभी बेहद खुश थे। वहीं आहान को न जाने आज क्यों बार बार रौनक की ओर देखना अच्छा लग रहा था और वही रौनक जो कि कान्हा जी की मूर्ति के आगे दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हुए थी और आंखें बंद करके कुछ न कुछ प्रार्थना कर रही थी, तो उसे देखे जा रहा था। उसका ध्यान प्रार्थना में कम और रौनक में ज्यादा था।